लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओ, हमने कल के प्रसारण के अंत में कहा कि बुरी योजनाएं बनाने वालों के मन में कपट, किंतु शांति समर्थकों के मन में आनंद है। यद्यपि बहुत से हैं जो युद्धों के द्वारा समाधानों की खोज करते हैं, जो अक्सर संबंधों के टूटने, अधिपत्य की महत्वाकांक्षाओं, सत्ता के दुरुपयोग, दूसरों के डर और विविधता को एक बाधा के रूप में देखने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। युद्ध अतीत की बात नहीं जो हमें भयभीत करती है, बल्कि यह सदैव एक भय है। वर्तमान में हम उन बातों को उभरता पाते हैं जो युद्धों का पुनः समर्थन करती हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, मैं बारंबार इस बात को दोहराता हूँ कि युद्ध सभी अधिकारों का हनन और पर्यावरण पर आक्रमण है। यदि हम सच्चे अर्थ में संपूर्ण मानव का विकास करने की चाह रखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम देशों और लोगों के बीच से युद्धों को दूर करने का अथक प्रयास करें। इसके लिए हमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा प्रस्तावित कानूनों के निर्विरोध शासन और वार्ता, विचार मंथन और मध्यस्थता के लिए अथक प्रयास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जो वास्तव में एक मौलिक न्यायिक मापदंड है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के 75 वर्ष उपरांत और इस सदी के 20 वर्षों के अनुभव हमें इस बात को दिखलाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बहाल करना अपने में प्रभावकारी होता है, और उन्हें लागू करने में हमारी असफलता हमारे लिए हानिकारक होती है। राष्ट्र संघों का चार्टर, जिसे हम निष्पक्षता में देखते और निष्ठापूर्ण लागू करते हैं, तो यह हमारे लिए एक आवश्यक न्याय और शांति संदर्भ का स्रोत बनता है। यहाँ हम किसी देश या समूह के लिए झूठे इरादों या स्वार्थ भरी मांग को नहीं पाते जो वैश्विक जन सामान्य की भलाई से हटकर हो। नियम को केवल तब लागू किया जाता जब वे लाभप्रद साधन साबित होते हैं, और जब यह नहीं होता तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है। अनियंत्रण शक्ति को हटा दिया जाता जो समाजों, गरीबों और कमजोरों, भाईचारे के संबंधों, पर्यावरण और सांस्कृतिक खजाने, वैश्विक समुदाय को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। युद्धों को हम सभी प्रकार के कथित मानवीय, रक्षात्मक या सावधानी बरतने के बहाने और यहाँ तक कि जानकारी की हेरा फेरी का हवाला देते हुए सहजता से चुन सकते हैं। वर्तमान सदियों में हर युद्ध को जाहिर तौर पर न्यायसंगत घोषित किया गया है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा सैन्य बल के माध्यम से वैध रक्षा की संभावना की बात कहती है, जिसमें यह साबित करना होता है कि कुछ नैतिक वैधता की कठोर शर्तें पूरी की गई हैं। फिर भी इस संभावित अधिकार का व्यापक व्याख्या में गिरना हमारे लिए आसान होता है। इस भांति कुछ लोग हैं जो युद्धों को जिन्हें रोका जा सकता है उन्हें भी गलत रूप में न्यायोचित घोषित करते हैं, जो बुराई को खत्म करने के बदले और भी बुराई की जड़ बन जाती है। मुद्दा यह है कि क्या परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार के विकास और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा पेश की गई विशाल और बढ़ती हुई संभावनाओं ने युद्ध को एक विशाल शक्ति प्रदान की है, जिसके द्वारा बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक शोषित किए जाते हैं। सच्चाई यह है कि मानवता को पहले कभी ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं थी। हालांकि हमें कुछ भी निश्चित नहीं करता है कि हम इसका उपयोग विवेकशील तरीके से करेंगे। हम युद्ध को किसी समस्या के हल स्वरूप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरे लाभों से कहीं अधिक होते हैं। इस संदर्भ में पिछली शताब्दियों में विस्तृत तर्कसंगत मापदंडों को लागू करना, जो एक न्यायसंगत युद्ध की बात को सही साबित करता है, अपने में आज बहुत मुश्किल है। अतः युद्ध फिर कभी ना हो। श्रोताओं, हमें इस बात को जोड़ने की आवश्यकता है कि बढ़े हुए वैश्वीकरण के साथ, जो दुनिया के एक हिस्से के लिए तत्काल या व्यावहारिक समाधान स्वरूप प्रकट हो सकता है, हिंसक और अक्सर गुप्त प्रभावों की एक श्रृंखला शुरू करता है, जो पूरे ग्रह को नुकसान पहुंचाती है और इस भांति भविष्य में नए और बदतर युद्धों के लिए रास्ते खुलते हैं। आज की दुनिया में हम एक देश को अपने में तटस्थ युद्ध करता नहीं पाते हैं, बल्कि हम टुकड़े और छोटे रूपों में विश्व युद्ध का अनुभव करते हैं। चूंकि देशों का भाग्य वैश्विक परिदृश्य पर बहुत ही गहराई से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संत पापा फ्रांसिस संत पापा योहान पौलुस 13वें के वचनों का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह सोच रखना अपने में निरर्थक है कि अन्याय की बातों का समाधान युद्ध के माध्यम किया जा सकता है। वैश्विक उथल पुथल और तनाव की स्थिति में इन बातों को घोषित करते हुए वे शीत युद्ध की स्थिति में शांति बहाल करने की चाह रखते थे। उन्होंने इस विश्वास का समर्थन किया कि शांति हेतु तर्क विशेष हितों की किसी भी रूपरेखा और हथियारों के उपयोग से कहीं अधिक मजबूत है। हालांकि शीत युद्ध के अंत में पेश किए गए अवसरों में भविष्य के लिए दृष्टिकोणों और हमारे सामान्य भाग्य की साझा विचार चेतना का अभाव था। इसके बजाय सार्वभौमिक और जन सामान्य की भलाई को बनाए रखने के बिना पक्षपातपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने और लागू करना आसान साबित हुआ। इस प्रकार हिंसात्मक युद्ध के लिए नए अध्याय की शुरुआत हुई। श्रोताओं, हर युद्ध हमारे लिए विश्व को पहले की तुलना में और अधिक कुरूप बना देता है। युद्ध हमारे लिए राजनीति और मानवता की असफलता एक शर्मनाक शर्तनामा, बुराइयों की ताकतों के सामने एक चुभने वाली हार को व्यक्त करता है। हम सैद्धांतिक चर्चाओं में फंसे ना रहें, लेकिन युद्ध के शिकार लोगों के घावों से अपने को प्रभावित होने दें। हम उन नागरिकों की ओर पुनः एक बार निगाहें फेरें, जिनका हताहत होना अपने में गौण समझा जाता है। हम हताहत हुए लोगों से पूछें, हम उन शरणार्थियों और पलायन के शिकार हुए लोगों के बारे में सोचें, जो परमाणु विकिरण या रासायनिक हमले से प्रभावित हैं, उन माताओं से जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, और वे लड़के लड़कियों के बारे में जो शारीरिक रूप से विकृत हो गए हैं या अपने बचपन को खो दिया है। हम हिंसा के शिकार हुए लोगों की सच्ची कहानियों को सुने, सच्चाई को उनकी आंखों से देखने का प्रयास करें और खुले हृदय से उन घटनाओं को सुने जिनका जिक्र वे हमारे लिए करते हैं। इस भांति हम बुराई के दंश को समझ सकेंगे जो युद्ध के हृदय में होती है। यह हमें शांति का चुनाव करने हेतु नादान समझे जाने से परेशान नहीं करेगी। श्रोताओं, हमने आज के प्रसारण में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में। सांसों में यीशु तू हो।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। स्लोवाकिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरिति की यात्रा में केवल 40 दिन शेष रह गए हैं। स्लोवाकिया के परम धर्मपीठीय मिशनरी कार्य संगठन ने संत पापा फ्रांसिस के आगमन की तैयारी के लिए एक पहल शुरू की है। एक मैराथन प्रार्थना 7 अगस्त से 15 सितंबर तक होगी। इसमें विश्वासियों को गिरजाघर में, अपने घरों में या अपने स्वयं के समुदाय में रोजाना सामूहिक प्रार्थना करनी होगी। आयोजक इस बात को रेखांकित करते हुए कहते हैं, हम भली इच्छा वाले सभी लोगों को एक आध्यात्मिक गुलदस्ता की तैयारी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिस पर प्रत्येक विश्वासी स्लोवाकिया और संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना के साथ एक आध्यात्मिक फूल चढ़ाएगा। स्लोवाकिया के धर्माध्यक्षों ने अपनी ओर से विश्वासियों को माता मरियम और संत जोसेफ के उदाहरण को देखने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा, यीशु का अनुसरण करने में माता मरियम और संत जोसेफ हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे जीवन में, हमारे दिल की गहरी इच्छाओं में उनकी उपस्थिति को पहचानने में हमारा नेतृत्व करें। धर्माध्यक्षों ने कहा, हम सभी व्यक्तिगत रूप से परिवार में या समुदाय में इस तीर्थ यात्रा में भाग लेने हेतु आमंत्रित किए गए हैं। संत पापा फ्रांसिस स्वयं सितंबर में भाग लेंगे और हमें व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करेंगे। सितंबर में संत पापा की यात्रा की आध्यात्मिक तैयारी हेतु परम धर्मपीठीय मिशनरी कार्य संगठन के प्रमुख ब्रातिस्लावा के सहायक धर्माध्यक्ष जोसेफ हास्को ने विश्वासियों को रोज रोजरी प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि संत पापा स्लोवाकिया में जिन शब्दों का उच्चारण करेंगे वो उपजाऊ भूमि पर गिरे और अधिक फल पैदा कर सके, यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध गहरा बन सके। विदित हो कि संत पापा की स्लोवाकिया प्रेरितिक यात्रा 12 से 15 सितंबर तक होगी। और वियतनाम के विन धर्म प्रांत के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। आज 34 नए पुरोहितों के अभिषेक का दिन है, जो मिशनरी भी होंगे, जहां प्रभु उन्हें सुसमाचार की घोषणा करने और गवाही देने के लिए बुलाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ विन के धर्माध्यक्ष अल्फोंस गुयेन ने रविवार 25 जुलाई को पुरोहित अभिषेक के परम पावन मिसा समारोह की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमणों में वृद्धि के कारण वियतनाम सहित दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी पीड़ा के समय में उनका धर्म प्रांत बहुत खुशी के इस क्षण को जी रहा है। कोविड-19 स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के कारण सीमित संख्या में धर्मसंघी, धर्म बहने, गुरुकुल के छात्र और धर्म प्रांत के कुछ लोक धर्मी ही इस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा, इस संकट के समय में नए पुरोहित भले समारी होंगे, घायल दिलों की देखभाल और सांत्वना लाएंगे। वे तीन धर्म प्रांतों में और दूर दराज के स्थानों में जहां ईश्वर बुलाएंगे वहां वे मिशनरी बनकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुसमाचार प्रचार करना प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति का कार्य है। प्रत्येक पुरोहित का उचित मिशन पुरुषों और महिलाओं को ईश्वर के पास ले जाना है ताकि मुक्ति और अनंत जीवन का उपहार प्राप्त हो सके। वियतनाम के लोग महामारी और अन्य कारणों से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। प्रार्थना और चिंतन के बाद मैंने इन नए पुरोहितों में से कुछ को अलग अलग क्षेत्रों में अन्य धर्म प्रांतों में भेजने का फैसला किया जहां पुरोहितों की कमी है। वे उनमें से कुछ को हंगहोआ के उत्तरी धर्म प्रांत में फिदई दोनुम पुरोहितों के रूप में भेज रहे हैं जहां पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में 10 प्रांतों में लगभग 250,000 विश्वासियों की सेवा करने के लिए पुरोहितों की कमी है। लैटिन शब्द फिदेई दोनुम का अर्थ है विश्वास का उपहार। ये पुरोहित दूसरे धर्म प्रांतों में सेवा करते हुए भी अपने स्वयं के धर्म प्रांतों से जुड़े हुए होंगे। उन्हें फिदेई दोनुम पुरोहित कहा जाता है। वियतनाम 2020 में सफलतापूर्वक कोरोना वायरस के प्रकोप को नियंत्रित कर पाया था, परंतु अब सबसे खराब लहर का अनुभव कर रहा है। इसने महामारी की शुरुआत के बाद से कम 524 मौतों के साथ 1,09,000 से अधिक संक्रमण दर्ज किए हैं। उधर इथियोपिया के धर्माध्यक्षों ने देश के टाइग्रे क्षेत्र में हिंसा को समाप्त करने के आह्वान को दोहराया है, जो पिछले साल नवंबर के सशस्त्र संघर्ष से तबाह हो गया है। टाइग्रे क्षेत्र में संघर्ष तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री अबी अहमद ने क्षेत्र के असंतुष्ट टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF पार्टी के प्रति वफादार बलों द्वारा संघीय सेना पर हुए हमले के लिए जवाबी कार्रवाई में एक सैन्य घुसपैठ का आदेश दिया। इस हिंसा में हजारों मौतें हुई, बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं और मानवीय स्थिति बिगड़ती जा रही है। धर्माध्यक्षों ने अपनी आम सभा के अंत में प्रकाशित एक बयान में कहा, युद्ध के बारे में सुनकर हमारे दिल को दुख होता है, जबकि हम शांति और सुलह के बारे में सुनना चाहते हैं। बढ़ते हुए संघर्ष के आलोक में धर्माध्यक्षों का कहना है कि युद्ध की भयावहता न तो गलतियों का समाधान है और न ही संकट का समाधान, क्योंकि युद्ध अनकही पीड़ा लाता है और निर्दोष लोगों द्वारा चुकाए जाने वाली कीमत अतुलनीय है। धर्माध्यक्षों ने शांति के मार्ग के रूप में वार्ता को अपनाने के लिए पार्टियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि हिंसा को रोकने में कभी देर नहीं होती है। लोगों की भलाई के लिए एकमात्र रास्ता शांति और सुलह है, जो सच्चाई और न्याय की मांगों को पूरा करता, क्षमा मांगता और देता, आपसी विश्वास बहाल करता और दूसरों को अपने भाई बहनों के रूप में स्वीकार करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है और हमारी असहमति कितनी गहरी है, बातचीत के माध्यम से किसी भी मतभेद को सुलझाया जा सकता है। उधर भूमध्य सागर में लीबिया के तट पर सोमवार को एक नाव पलट जाने से कम 57 लोग डूब गए। अधिकारियों ने कहा कि जहाज के मलबे से शव बरामद नहीं किए गए हैं, लेकिन नवीनतम प्रवास त्रासदी से बचे लोगों में नाइजीरिया, घाना और गाम्बिया के प्रवासी शामिल हैं। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा मछुआरों और तटरक्षकों द्वारा तट पर लाए गए बचे लोगों के अनुसार डूबने वालों में कम 20 महिलाएं और 2 बच्चे थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।